ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
போலே பிரம்ம தத்துவக்கு, பகவத் தத்துவக்கு, பகவான்கி சரல் சப்தோமே சமஜ்னே கே லியே கஹே கி பகவான்கி சரண் லேகர், ஆத்மா கி சரண் லேகர், உஸ்கி சரணாங்கதி மே அப்னி புத்தி கோ ஸ்திர ரக்கே. ஔர் ஜப் புத்தி ஸ்திரதா மே ரஹேகி, ஃபிர் ருகேகி, தபி வோ சத்யஸ்கே சாத் சத்ய கா உசே சாகார் ரூப் மே சாட்சாத்கார் ஹோகா. ஔர் உஸ் சாட்சாத்கார் மே வஹ அப்னே திவ்ய ஆலோக கோ, திவ்ய ப்ரஹ்ம தேஜ கோ, திவ்யானந்த கோ, ஜோ சப் தரஹ சே அப்னே பீதர் பிரகாஷ் ஹே, உஸ் ஸ்வாத்மா ஆலோக கோ ப்ராப்த கர்கே ஆலோகித் ஹோனே வாலி திவ்ய ஆனந்த், வஹீ ஆனந்த் சர்வத்ர பாஹர் பீதர் ஜக்மகா ரஹா ஹே, ஜிஸே கஹா கி வோ அத்யந்த பாஸ் பீ ஹே, அத்யந்த தூர் பீ ஹே, பாஹர் பீ ஹே, பீதர் பீ ஹே, ஊபர் பீ, நீச்சே பீ, தாயே பீ, பாயே சாரோ ஓர் ஹே. இஸ்லே அப்னா தர்சன் சம்யக் தர்சன் ஹோ, கிரணா ந ஹோ, கிரணா நஹி ஹோ சக்தி. ஔர் தூசரா உஸ்கே லியே யஹி இஸ் வித்யா கா தாத்பர்ய ஹே நாராயண். க்யோங்கி வியக்தி ஜப் தக் சர்வபூத், அச்சா சர்வபூத் ரூப் சமஜ்னே கே லியே விசார் கரே கி சர்வத்ர சர்வபூத் பஞ்ச தத்துவ, சர்வ மே ஏக ஹே, ஔர் சபி கே அந்தர் யே சகல் ஜகத் பஞ்ச தத்துவோ சே பனா ஹுவா, பஞ்ச தத்துவ சர்வத்ர ஏக, பஞ்ச பூத் சர்வத்ர ஏக, சப் ஏக ஹி ஹே. ஔர் ஜோ மே ஹே வோ மே பி ஏக ஹி ஹே, மே ஜோ ஸோ ஹம், ஜோ மே ஹூ ஸோ ஹி தும் ஹோ, ஜோ தும் ஹோ ஸோ ஹி மே ஹூ. தோ யே மே ஏக படா சுந்தர் பிரசங்க ஆதா ஹே தேவி பாகவத் மே, கி ஏக பார் சுக்தேவ் பகவான் கே அந்தர் இச்சா ஹுயி, சுக்தேவ் பகவான் கே அந்தர் இச்சா யே ஹுயி கி உன்கே பிதா ஸ்ரீ வியாஸ் ஜி மஹாராஜ் யே சாஹ ரஹே தே கி சுக்தேவ் க்ரஹஸ்தாஸ்ரம் கோ ஸ்வீகார் கரே. ஔர் சுக்தேவ் ஜி கி தீவிர வைராக்ய ஹே, ஔர் ஜிஸ்கே காரண வோ க்ரஹஸ்த கே பிரபஞ்ச மே நஹி படனா சாஹதே ஹே, நிஸ்பிரபஞ்ச ஹோகர் ப்ரஹ்ம சிந்தன் கர்னா சாஹதே ஹே. உன்கே பிதா ஸ்ரீ கி இச்சா தி கி வோ க்ரஹஸ்த, ஜப் உன்னோனே கஹா கி பேட்டா ஏக பார் தும் மஹாராஜ் ஜனக் கா சத்சங் கரோ, ஜனக் ஜி கே பாஸ் ஜாவோ, தேகோ க்ரஹஸ்தாஸ்ரம் மே ரஹதே ஹுவே வோ கேசே ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானி ஹே. தோ ஜனக் ஜி கே ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானி ஹோனே பர் சுக்தேவ் ஜி கோ படா சந்தேஹ ஹுவா கி ராஜா ஜோ ராஜ் காஜ் மே லகா ஹுவா ஹோ, ராஜ் மஹல் மே ரஹ ரஹா ஹோ, ராஜ் பிரசாதனோ மே ரஹ ரஹா ஹோ, வோ பலா ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானி ஹோ கேசே சக்தா ஹே. ஔர் ஜோ ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானி ஹோகா வோ கேசே அப்னா ராஜ்கரண் சலா சகேகா, யே தோனோ பாத் கேசே சம்பவ ஹோ சக்தி ஹே. யே தோ முஜே ஐசி பாத் லக்தி ஹே ஜோ கோயி வியக்தி ஜன்மாந்த அந்தா ஹோ ஔர் உஸ்கா நாம் ரக் தியா ஜாய் நேன்சுக், நேன்சுக் உஸ்கா நாம் ரக் தியா ஜாய், முஜே தோ ஐசி ஹி பாத் லக்தி ஹே ஜேசே மஹாராஜ் ஜனக் கே லியே ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானி கஹா ஜா ரஹா ஹூ. பர் பிதா கி ஆக்யா தி ஔர் மில்னே கி ஜிக்யாசா பி பனி, இச்சா பி பனி. ஔர் இஸ் இச்சா கோ லேகர் கே ஹிமாலய சே சல்கர் சுக்தேவ் ஜி மஹாராஜ் மஹாராஜ் ஜனக் கி ராஜதானி மே ஆயே. தோ பிரசங் படா லம்பா ஹே, ராஜதானி மே பஹே தோ பஹலே துவாரபாலோ கே சாத் பாத்சீத் ஹுயி, யே கோயி சாதாரண நகர் கே துவாரபால் தோ நஹி ஹே பாய், யே பி மஹாராஜ் ஜனக் கி ராஜதானி கே விதேய ராஜ் கி ராஜதானி கே துவாரபால் தே. இன்னோனே பிரஸ்ன பஹலே கிரா கே ஹே ப்ராஹ்மண், பஹலே யே பதாவ் சுக் க்யா ஹே, துக் க்யா ஹே, மனுஷ்ய கித்னே பிரகார் கே ஹோதே ஹே, யே சப் ஜி பிரஸ்ன பூச்சே. உன்கா உன்னோனே உத்தர் தியா कि सुख और दुख, सुख स्वरूप आत्मा है, दुख, सुख और दुख जिसे हम कहते हैं ये केवल मन, मन की अनुकूलता का नाम सुख है, मन की प्रतिकूलता का नाम दुख है। सुख दुख के दोनों कल्पित रूप से, दोनों कल्पित रूप से मन में विद्यमान रहते हैं, मन में ही दोनों कल्पित हैं, वास्तविक नहीं है, ये दोनों के दोनों कल्पित रूप में है। इस प्रकार उन्हें उपदेश दिया, उनकी शंकाओं का समाधान किया। जब महाराज जनक से मिले तो जनक जी के साथ जब उनका भेंट होने का था तो कहा, महाराज जनक अभी राजकाज में बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं, इसलिए इस समय उनसे मिलने से पहले महाराज जनक की आज्ञा है कि जाकर उन्हें सारा राजभवन दिखा के दर्शन कर घुमा करके लाया जाए। परंतु जब राज्य को घुमाने के लिए कहा तो साथ में एक शर्त रख दी गई कि हाथ में तेल की भरी हुई कटोरी है, इस तेल की कटोरी से एक बूंद भी नीचे छलकनी नहीं चाहिए, और यदि तेल की बूंद छलक गई, गिर गई, तो इसके साथ ही मृत्युदंड उनके लिए निर्धारित हो गया। महाराज जनक का ये आदेश और सुखदेव जी की हथेली में तेल की कटोरी रखकर जब घुमाया गया, भरे हुए राजमहल में सब दर्शन कराए, तो महाराज के विदेहराज की नगरी में कहीं यज्ञ हो रहा है और कहीं वेद पारायण हो रहा है, कहीं अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और कहीं न्याय हो रहा है, और सब प्रकार का उस राज के अंदर सभी कार्य हो रहे थे। महाराज घूम करके जब सुखदेव जी को राजा जनक के पास लाया गया तो जनक जी से उन्होंने पूछा, महाराज आप ये बताइए, आपने सारे मेरे राज्य का दर्शन किया है, आप बड़े संत हैं, ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं मेरे राजकरण में कोई त्रुटि तो नहीं है, कमी तो नहीं है? आपने देखा है तो मुझे मेरी कमी को बता दें, तो ताकि उसे दूर किया जा सके, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया, राजा तेरे राज्य में मैंने क्या देखा ये मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने पूरे राज्य को घूमा तो सही, परंतु उसमें मैंने आंखों ने देखा भी, परंतु देखते हुए भी, उन्होंने आंखें होते हुए देखते हुए उनका उत्तर क्या था कि मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, आंखें थी, देखा भी, और देखने के बाद भी उनका उत्तर था मैंने कुछ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उसका साफ सा उत्तर था कि उनका समूचा ध्यान उस तेल की भरी हुई कटोरी में था कि कहीं उसमें से एक बूंद तेल की छलक न जाए, गिर न जाए, कहीं उस तेल के साथ असावधानी न हो जाए, उस तेल के साथ सावधानी बरतते हुए उन्होंने सारे राजमहल को देखा था। उसी तरह से महाराज जनक का पहला उत्तर था कि जो आपकी मेरे लिए शंका है, मैं राजकरण करता हूँ परंतु अपने स्वरूप में सावधानी रखता हूँ, कहीं स्वरूप से मेरी वृत्ति हट न जाए, स्वरूप से मेरी अविचलितता, मेरी निष्ठा अपने आत्म स्वरूप से विचलित न होने पाए, मैं अपनी आत्मनिष्ठा को अपने स्वरूप में स्थिर रखते हुए मैं इस राज्य का कार्यभार देखता हूँ, संभालता हूँ। अर्थात उन्होंने कहीं आसक्ति पूर्वक नहीं, बड़ी अनासक्ति। तब महाराज जनक ने पूछा, महाराज आप संत बनके सब छोड़ करके कहाँ जाना चाहते हैं? जंगल में एकांत आपको प्रिय है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपको जंगल में जाने से एकांत मिलेगा? पहला प्रश्न था कि एकांत किससे लेना चाहते हैं। बोले पंचभूतों से। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव पश्यति। ये संपूर्ण भूत सर्वत्र सब जगह एक है, इसलिए जो पंचभूत यहां है वही पंचभूत जंगल में भी है, जो प्रपंच यहां है सो प्रपंच जंगल में भी है। उन्होंने कहा जंगल में जाने से क्या आपको ये पंचभूत वहां नहीं मिलेंगे? आकाश जल वायु पृथ्वी अग्नि ये पंचभूत वहां नहीं मिलेंगे, और ये पंच तत्व शब्द स्पर्श रूप रस गंध से क्या ये पंचभूत अलग होंगे? पंचभूतों का जो धर्म है शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह में है महाराज। तो ये तो वहां जंगल में भी रहेंगे, और जिस जहां आप एकांत में सर्वत्र पंचभूत एक शरीर के व्याप्त हैं तो तब आप इनसे कैसे छूटेंगे? और यदि आप ये कहते हैं कि संसार में प्राणी रहते हैं मनुष्य रहते हैं मैं इनसे छूटूं, तो इनसे छूटने की बात तो ये है मनुष्यों से छूटेंगे तो पक्षियों के साथ पशुओं के साथ जंगल में रहेंगे, पशु पक्षी तो वहां रहेंगे वो भी तो आपका एकांत भंग करेंगे। यदि शहर में रहकर मनुष्यों से आपका एकांत भंग होता है तो जंगलों में पक्षियों से आपका एकांत भंग नहीं होगा, पशुओं से आपका एकांत भंग नहीं होगा, वो भी वहां भी तो एकांतता टूटेगी। इसलिए महाराज वो एकांतता नहीं है। यदि आपको एकांतता ही प्राप्त करनी है, एकांत ही रहना है, तो जंगल में जाकर के नहीं, आप अपने घर में रहकर एकांत कीजिए कि एक में जिसका एक अखंड एक रस नित्य स्वरूप जो आत्मा है उसमें अपनी स्थिरता बना कर लीजिए, वही एकांत है। बोले वह एक मेवा अद्वितीयम, जो एक अद्वितीय आत्मा है, जो एक है अद्वितीय है एक रस है, जहां ने नानास्ति किंचनम वहां अनेकता नहीं है, वह तो एक ही है। बोले वो एक कौन? वो ब्रह्म, वो तत्व, वो आत्मा, वो एक है। ऐसा निश्चय कर, ऐसी मति दृढ़ करके आप उसमें अपनी स्थिरता कीजिए, अपनी बुद्धि को स्थिर कीजिए। तो इसलिए कहा जब उस आत्म तत्व में बुद्धि स्थिर होती है, उस सत्य में का साक्षात्कार होता है, सत्य के साक्षात्कार के बाद जो दृष्टि खुलती है बाहर की ओर, तो सब में यो माम पश्यतु सर्वभूतेषु, सब में उसी दिव्य आलोक का, दिव्य प्रकाश का दर्शन होने लगता है नारायण सबके अंदर। कब? जब दृष्टि अपने से मिली हुई होती है। फर्क कहाँ होता है? जब दृष्टि अपने से मिली हुई नहीं होती। जब अपने से दृष्टि मिल गई, अपने से दृष्टि मिलकर अपना साक्षात्कार किए होती है, तब बाहर जो दृष्टि निकलती है उसमें भी सब में वही दिखाई पड़ता है। कहीं घृणा नहीं, कोई किसी के साथ क्रोध नहीं, बोली घृणा नफरत नहीं, उसके साथ घृणा नहीं होती। कैसे नहीं होती है? मैं कई बार आपको पहले भी ये उदाहरण दी कि बड़े प्यार से जलेबी खा रहे थे, कभी कभी जलेबी खाते हुए अपने ही दांत से अपनी जीभ कट जाती है, तो गुस्सा करके आपने कभी पत्थर लेकर के अपने दांत के ऊपर चढ़ गए हो? ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरी जीभ को दांत ने काट दिया तो मैं इस दांत को तोड़ दूं? ऐसा तो कभी आपका गुस्सा आपके दांत पर नहीं उतरा, इस हद में कभी आपका गुस्सा नहीं गया कि आप पत्थर उठा करके अपने दांत को तोड़ने लग गए हो? बोले ऐसा गुस्सा आता ही नहीं, क्यों नहीं आता? बोले इसलिए नहीं आता कि आप कहते हैं दांत भी मेरा जीभ भी मेरी, दोनों में आप अपने आप को देखते हो। जब दोनों में आप एक अपने को देखते हैं, दोनों में आप एक अपने को देखते हैं, तो आपके कहीं गुस्सा नहीं रहता, कहीं घृणा नहीं रहती। और यदि यही काम कोई बाहर वाला कर दे, छोटी सी किसी से चोट लग जाए, तो आप उस पर राशन पानी लेकर के चढ़ जाओगे, उसे तूने मेरे चोट मार दी, तुझे दिखता नहीं है, उसे 10 बात सुना करके उस पर क्रोधित हो जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि वो बाहर दूसरा दिखता है, ये दूसरा है। तो कहने का अर्थ मेरा ये था, उपनिषद हमें ये बताना चाहती है, जो साधक अर्थात जिसने अपनी बुद्धि से राग और द्वेष इन दोनों को हटा दिया है, इन दोनों को अपनी बुद्धि से अलग कर दिया है, दोनों को अपने से छोड़ दिया है, उसकी बुद्धि निष्पक्ष हो गई है, और वो निष्पक्ष बुद्धि स्वस्थ के साथ स्व का साक्षात्कार पा चुकी है। स्व का साक्षात्कार होने के साथ, स्व का साक्षात्कार आत्मा का साक्षात्कार है, ब्रह्म का साक्षात्कार है, परमात्मा का साक्षात्कार है, भगवान का साक्षात्कार है। भगवान का साक्षात्कार को, ब्रह्म का साक्षात्कार को बहुत से लोग कहते हैं, माता जी क्या आज के समय में किसी को आत्म साक्षात्कार हो सकता है? बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं, माता जी क्या ये बात सच है कि आत्म साक्षात्कार हो सकता है, भगवान का साक्षात्कार हो सकता है कलयुग में? बोले भगवत स्वरूप जिसे आप भगवान ही समझ कह रहे हैं, शब्द का विश्लेषण जिसे दे रहे हैं, वो भगवान कौन? बोले वो भगवत स्वरूप कोई और नहीं है, वो भगवत स्वरूप अपना आपा ही है, अपना आपा अपनी आत्मा ही है, और अपने आत्मा से ही जुड़ना है। क्या उसका साक्षात्कार हो सकता है? बोले हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर कब हो सकता है? जब उसके साक्षात्कार के लिए आप अपने आप को पूर्ण रूप से निश्चित तैयार करेंगे। तब तैयार कैसे करेंगे? बोले जो उस साक्षात्कार को प्राप्त करने में होने में जो आपके बाधक रूप हैं, प्रतिबंधक हैं, आवरण हैं, उन्हें आप हटाना चाहेंगे। जैसे प्याज की गांठ को आप अपने हाथ में ले लो और उससे एक परत एक परत एक फूल ले लो गुलाब का, उससे एक एक करके पंखुड़ियों को उतारते जाओ, गिराते जाओ गिराते जाओ, प्याज की गांठ की परतें निकालते गिरा छोड़ते छोड़ते गिराते गिराते, बचा क्या? कुछ नहीं। जहां कुछ नहीं है वहां स्व है, नारायण स्व है, मैं। और जहां कुछ है, जहां अन्य है, अन्य की भावना है, अन्य की कल्पना है, उस अन्यता के साथ ही वो दूर दिखाई पड़ता है। जहां अन्य मिट जाता है वहीं वह स्व प्राप्त होता है। बस केवल इतनी सी बात है। और इस बात को समझने के लिए आपको एकांत में बैठ करके इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। गुरुजनों के चरणों में बैठकर समझ करके एकांत में बैठकर आप अपने आप को अपने साक्षात्कार के लिए अपने आवरणों को हटा करके नेति नेति के शब्द के द्वारा यह भी नहीं यह भी नहीं यह भी नहीं नेति नेति पूर्वक सबको हटाते हुए जहां कुछ नहीं रहेगा, जहां कुछ नहीं है वहां वो है। वो कौन? बोले वो आत्मा, उसका साक्षात्कार हो सकता अपने आपा से। बोले ये कब हो सकता है? इसीलिए उपनिषद कठोपनिषद बहुत बढ़िया कहती है, नए आत्मा लभते न प्रवचने न। कोई किसी ने कहा कि मैं प्रवचन से आत्मा को प्राप्त कर लूंगा, नहीं, वो आत्मा के प्रवचन से भी नहीं मिलती। किसी ने कहा कि मैं आत्मा के लिए सुनूंगा श्रवण करूंगा, बस रूपेण मैं सुनकर के, किसने कहा कि मैं बोल करके पाऊंगा, बोले वो बोल करके भी नहीं मिलता। किसी ने कहा कि मैं सुनकर के पाऊंगा, बोले वो सुनकर के भी नहीं मिलता है, न तो वो सुनने से मिलता है न वो बोलने से मिलता है। तब वो कैसे प्राप्त होता है, बोले वो प्राप्त होती है, आत्मा प्राप्त होती है आत्मा की कृपा से। आत्मा जब स्वयं कृपा करती है, बोले स्वयं कृपा क्या है, स्वकृपा अपनी कृपा, स्वरूप जब आप अपने स्व के साथ अपने आपा के साथ जुड़ने के लिए कोशिश करेंगे तभी तो आपको उसकी कृपा की भी अनुभूति होगी। नारायण, जब तक आप स्वयं ही कोशिश नहीं करेंगे तो उसके साथ मिल कैसे जा सकते हैं। इसलिए घृणा द्वेष इन सब विकारों से, छठे मंत्र में हमें ये कहा गया है कि इन सब से हटने के लिए, क्योंकि जब तक ये घृणा रहेगी तब तक भला कैसे हमें उस आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। यस्मिन सर्वाणि भूतन्ने आत्मा भूत विजानत तत्र को मोह कौशोक एकत्व मनुपश्यति। उपनिषद कहती है कि कहां मोह है, कहां शोक है, और कहां शोक मोह है वहां तो केवल एकत्व, केवल एक आत्मदर्शन है, एक आत्मभाव है। तो एक आत्मभाव की एक रस्ता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, बोले बुद्धि को स्थिर करना होगा। बुद्धि स्थिर करो भगवान के चरणों में, उसकी शरणागति में। एक बिंदु में कल मैंने कहा था, अपने मैं को किसी एक खूंटी के साथ, अपनी बुद्धि को स्थिर करो मान्यता के साथ, और जिससे कि आप अपने साधन का क्रम आगे बढ़ा सके। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ आज के सत्य सच्चिदानंद भगवान की।